एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मेरा नाम है मेजबान दो का नाम।
सोचिए, क्या हो अगर आपकी लंबे समय तक चलने वाली खुशी का 90% हिस्सा उन चीजों पर निर्भर ही ना करता हो जिन्हें आप बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं।
जैसे
ज्यादा पैसा कमाना या शायद बेहतर घर लेना, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना।
हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं।
बिल्कुल। तो आज हम इसी चौंकाने वाले लेकिन उम्मीद जगाने वाले विचार की पड़ताल करेंगे।
जी, और मैं हूँ मेजबान दो का नाम। आज हम बात कर रहे हैं सोनिया ल्यूबोमिर्स्की की किताब द हाउ ऑफ हैप्पीनेस पर।
हाँ, यानी खुशी पाने का तरीका। ये किताब एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या हम वाकई ज्यादा खुश रह सकते हैं और क्या साइंस विज्ञान इसमें हमारी मदद कर सकता है?
बिल्कुल, और ये सवाल आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है ना।
हाँ बिल्कुल।
खुशी की तलाश तो शायद हमेशा से रही है, हर कोई खुश रहना चाहता है, पर लगता है कि एक किस्मत की बात है या बस बाहरी चीजों पर टिकी है।
सही कहा।
पर क्या हो अगर खुशी एक एक हुनर हो?
अच्छा, एक हुनर।
हाँ, और आज की जो ये भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इतनी तनाव भरी, हम सब कहीं ना कहीं वो सुकून, वो बैलेंस ढूंढ रहे हैं।
हाँ वो तो है।
तो ऐसे में ये जानना कि क्या विज्ञान हमें सचमुच ज्यादा खुश रहने में मदद कर सकता है, ये बहुत ही मतलब रेलेवेंट हो जाता है।
सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं लेखिका से सोनिया ल्यूबोमिर्स्की। कौन है ये?
जी, तो सोनिया ल्यूबोमिर्स्की एक बहुत ही जानी मानी मनोवैज्ञानिक है। जन्म तो रूस में हुआ था पर पली बढ़ी अमेरिका में।
अच्छा।
हार्वर्ड से पढ़ाई की, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD सोशल और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में।
वाह, मतलब अकादमिक बैकग्राउंड तो बहुत स्ट्रांग है।
हाँ बिल्कुल, और आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं और पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसे हम सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं।
हाँ सुना है इसके बारे में।
तो उस फील्ड की वो एक लीडिंग रिसर्चर हैं, दुनिया भर में उनका नाम है।
और देखिए, उनकी बात इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ उनकी निजी राय नहीं है या कोई सुने सुनाए नुस्खे नहीं है।
सही कहा।
ये 2 दशकों से ज्यादा के, मतलब सोचिए 20 साल से ज्यादा के कठोर वैज्ञानिक शोध का नतीजा है।
जी हाँ, एक्सपेरिमेंट स्टडीज।
बिल्कुल, उनके अध्ययनों को तो अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जैसे बड़े संस्थानों से फंडिंग भी मिली है।
अच्छा।
उन्होंने बाकायदा प्रयोग करके देखा है कि खुशी बढ़ाने के कौन से तरीके वाकई काम करते हैं
और किन लोगों पर करते हैं ना?
हाँ, और किन हालात में ज्यादा असरदार होते हैं। तो ये किताब सिर्फ अच्छी सलाह नहीं है,
नहीं,
ये वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित एक तरह का रोडमैप है। यही चीज इसे बाजार में मिलने वाली अनगिनत सेल्फ हेल्प किताबों से अलग करती है, इसकी वैज्ञानिक प्रमाणिकता।
बिल्कुल, और यही विश्वास जगाता है। अच्छा, तो अब किताब के मेन आइडिया पर आते हैं, जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है।
हाँ बताइए।
ल्यूबोमिर्स्की कहती हैं कि हमारी जो लंबे समय तक टिकने वाली खुशी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 40%,
40%,
हाँ 40%, वो हमारे अपने इरादों, हमारे कामों और हमारी सोच पर निर्भर करता है।
अच्छा, मतलब सिर्फ हमारे जीन्स या हमारी जिंदगी के हालात से तय नहीं होता?
नहीं, जीन्स और हालात का रोल है, पर उतना नहीं जितना हम सोचते हैं।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है।
हाँ, और इसी को वो कहती हैं 40% सोल्यूशन या द 40% सोल्यूशन।
इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये 40% कैसे?
बिल्कुल, वो हमारी खुशी के लेवल को एक पाई चार्ट की तरह देखती हैं। 3 हिस्से हैं उसके।
ठीक है।
पहला, करीब 50% हिस्सा ये हमारी जेनेटिक बनावट से तय होता है, इसे सेट पॉइंट कहते हैं।
मतलब कुछ लोग पैदाइशी ज्यादा खुश मिजाज होते हैं।
हाँ कह सकते हैं, उनकी एक बेसलाइन होती है।
हाँ,
कुछ ज्यादा आशावादी, कुछ शायद कम।
ठीक है, ये हुआ 50%। बाकी 50%?
अब जो बाकी 50% बचा, उसमें से सिर्फ 10%, सिर्फ 10%,
हाँ,
वो हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
बस 10%?
सिर्फ, सब 10%।
जैसे?
जैसे हमारी आमदनी कितनी है, सेहत कैसी है, शादी हुई या नहीं, नौकरी कैसी है, वगैरह वगैरह।
अरे, ये तो वही चीजें हैं जिनके पीछे हम अक्सर भागते रहते हैं।
बिल्कुल, अपनी सारी ऊर्जा इसी 10% पर लगा देते हैं।
सही कहा। तो ये 60% हो गया, बाकी 40% कहाँ गया?
वही वही है सबसे जरूरी 40% हिस्सा। ये निर्भर करता है हमारी जानबूझकर की गई गतिविधियों पर, इंटेंशनल एक्टिविटीज।
जानबूझकर की गई गतिविधियां मतलब?
मतलब हमारे रोजमर्रा के सचेत चुनाव, हम क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, अपने रिश्ते कैसे निभाते हैं, ये सब।
अच्छा।
और यही वो 40% है जहाँ बदलाव की, अपनी खुशी को बढ़ाने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है।
वाह, तो ये किताब असल में खुशी को कोई रहस्यमय चीज नहीं मानती।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि एक हुनर की तरह देखती है
जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है।
हाँ, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना या फिट रहना, मेहनत लगती है।
तो ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से थक गए हैं।
हाँ, और एक भरोसेमंद वैज्ञानिक रास्ता चाहते हैं।
ये हमें दिखाती है कि हम अपनी खुशी की ड्राइविंग सीट पर कैसे बैठ सकते हैं।
यहीं पर वो एक और जरूरी बात बताती हैं, हेडोनिक अडैप्टेशन।
हेडोनिक अडैप्टेशन
ये क्या है?
इसका मतलब है कि हम इंसान चीजों के बहुत जल्दी आदि हो जाते हैं, अच्छी चीजों के भी, बुरी चीजों के भी।
अच्छा, कैसे?
सोचिए, नई गाड़ी खरीदते हैं तो कितनी खुशी होती है।
हाँ, बहुत।
पर कुछ महीनों बाद वो नॉर्मल लगने लगती है।
हाँ, ये तो होता है। प्रमोशन की खुशी भी कुछ दिन रहती है।
बिल्कुल। और इसी तरह हम मुश्किलों से भी धीरे धीरे उभर जाते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं। यही वजह है कि सिर्फ बाहरी हालात बदलने से, जैसे ज्यादा पैसा आने से या शादी होने से, हमें स्थायी खुशी नहीं मिलती,
क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं।
एग्जैक्टली। इसलिए खुशी के लिए लगातार कुछ करना पड़ता है, वो 40% वाली एक्टिविटीज।
समझ गया, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, किताब की बनावट कैसी है, क्या वो इन एक्टिविटीज के बारे में बताती है?
हाँ, बिल्कुल। किताब को 3 हिस्सों में बांटा गया है।
ओके।
पहला हिस्सा है खुशी की नींव रखना, समझना कि खुशी क्या है, कैसे काम करती है।
ठीक है।
दूसरा हिस्सा है उन 12 करने वाली गतिविधियों के बारे में जो असल में खुशी बढ़ाती हैं।
अच्छा, 12 गतिविधियां।
हाँ। और तीसरा हिस्सा इस बारे में है कि जो खुशी हमने बढ़ाई है उसे लंबे समय तक टिकाऊ कैसे बनाए।
बढ़िया स्ट्रक्चर है, तो पहले हिस्से से शुरू करें, नींव रखने वाले अध्याय।
जी, अध्याय 1 से 3। तो अध्याय 1 में लेखिका सीधे पूछती हैं, क्या वाकई ज्यादा खुश होना मुमकिन है?
हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है।
और वो उन आम मिथकों को तोड़ती हैं, जैसे खुशी तो किस्मत में लिखी होती है, या हालात सुधर गए तो बस हमेशा खुश रहेंगे।
हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं।
वो कहती हैं, विज्ञान कहता है हाँ, स्थायी खुशी पाना संभव है, मुमकिन है।
ये उम्मीद जगाने वाली बात है। फिर अध्याय 2।
अध्याय 2 पूछता है, आप कितने खुश हैं और क्यों? यहाँ वो 50-10-40 वाले पाई चार्ट को और डिटेल में समझाती हैं।
अच्छा।
और हेडोनिक एडेप्टेशन पर गहराई से बात करती हैं, कि क्यों लॉटरी जीतना या मनचाही शादी होना जैसी बड़ी घटनाएं भी हमें परमानेंटली खुश नहीं कर पाती। इसमें एक सब्जेक्टिव हैप्पीनेस स्केल भी दिया है, पाठक खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अभी कितने खुश हैं।
सेल्फ असेसमेंट टूल जैसा कुछ।
हाँ। और फिर आता है अध्याय 3, जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी है।
वो क्या है?
इसमें व्यक्ति गतिविधि फिट, पर्सन एक्टिविटी फिट का कॉन्सेप्ट है।
व्यक्ति गतिविधि फिट।
हाँ, मतलब खुशी बढ़ाने का कोई एक फॉर्मूला सबके लिए काम नहीं करता।
अच्छा, ये तो बड़ी काम की बात है।
बिल्कुल। जैसे एक ही दवा हर किसी पर असर नहीं करती ना।
हाँ।
वैसे ही खुशी की कोई एक रणनीति सबके लिए फिट नहीं बैठती। आपके लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी रहेगी, या आपकी पर्सनालिटी, आपकी पसंद नापसंद, आपकी वैल्यूज, इन सब पर निर्भर करता है।
तो मतलब जो तरीका मेरे दोस्त के लिए काम कर रहा है, जरूरी नहीं मेरे लिए भी करे।
बिल्कुल जरूरी नहीं। इसीलिए इस अध्याय में एक डायग्नोस्टिक टूल भी है, वो आपको अपने लिए सही गतिविधियां चुनने में मदद करता है।
वाह, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम यही गलती करते हैं, किसी और को देख के वही करने लगते भले हमें मजा आए ना आए।
एग्जैक्टली। खैर, अब आते हैं किताब के, कह सकते हैं, दिल पर,
यानी दूसरे हिस्से पर,
जहां वो 12 गतिविधियां हैं।
हाँ, अध्याय 4 से 8 तक ये वो 12 वैज्ञानिक रूप से परखी हुई गतिविधियां हैं जो हमारी खुशी को बढ़ा सकती हैं।
सारी 12 पर तो शायद बात ना हो पाए, कुछ खास समूहों पर फोकस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो पहला ग्रुप है जो हमारी सोच बदलने से जुड़ा है, जैसे अध्याय 4 में बताया गया है।
इसमें क्या आता है?
इसमें सबसे पहले है कृतज्ञता, आभार जताना,
ग्रेटिट्यूड।
हाँ, पर ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है।
तो फिर क्या है?
ये रोजाना उन चीजों को याद करना और महसूस करना है जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं।
जैसे?
छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, अच्छी सेहत, परिवार का साथ, सुबह की धूप, एक कप अच्छी चाय, कुछ भी। इसके लिए तरीके सुझाए गए हैं, जैसे आभार डायरी लिखना, रोज 3-5 चीजें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या किसी को दिल से धन्यवाद पत्र लिखना।
ये सुनने में अच्छा लग रहा है, और क्या इस ग्रुप में?
इसी में आता है आशावाद विकसित करना, ऑप्टिमिज्म।
मुश्किलों में भी अच्छी चीजों की उम्मीद रखना।
हाँ, और इसका एक तरीका है बेस्ट पॉसिबल सेल्व्स एक्सरसाइज, मतलब अपने सबसे अच्छे भविष्य की कल्पना करना और उसे लिखना।
दिलचस्प है।
और हाँ, दो चीजों से बचना भी जरूरी है। एक तो जरूरत से ज्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग।
उफ़, ये तो बहुत कॉमन है।
और दूसरा, दूसरों से अपनी तुलना करना, सोशल कंपैरिजन।
हाँ, ये भी सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी ज्यादा।
बिल्कुल, इसके पीछे का विज्ञान भी सीधा है। आभार हमें दिखाता है कि हमारे पास क्या है, ना कि क्या नहीं है, और आशावाद हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।
सही बात। अच्छा, ये तो हुई सोच की बात, अगला ग्रुप कौन सा है?
अगला अहम ग्रुप है रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव पर, सोशल कनेक्शंस, जैसे अध्याय 5 में।
रिश्ते तो जरूरी हैं ही, इसमें क्या सुझाव हैं?
इसमें है दयालुता का अभ्यास करना, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस,
दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना।
हाँ, छोटे बड़े अच्छे काम बिना किसी उम्मीद के, जैसे किसी की मदद कर देना, किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोल देना, किसी की तारीफ कर देना।
और
अपने सामाजिक रिश्तों को सींचना, नर्चर करना, परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, उनकी बातें ध्यान से सुनना, उनका साथ देना।
ये तो बहुत जरूरी है।
अनगिनत स्टडीज दिखाती हैं कि गहरे और पॉजिटिव सामाजिक संबंध खुशी और लंबी उम्र के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है।
हाँ, भारत जैसे देश में तो समुदाय और रिश्तों का वैसे भी बहुत महत्व है।
बिल्कुल, हालांकि आपने सही कहा, कभी कभी यही सामाजिकता तुलना और दबाव का कारण भी बन जाती है।
खैर, अगला ग्रुप।
तीसरा महत्वपूर्ण ग्रुप है मुश्किलों का सामना करने और वर्तमान में जीने से जुड़ा, कोपिंग और लिविंग इन द मोमेंट। ये अध्याय 6 और 7 में है।
मुश्किलों का सामना मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट।
हाँ, तनाव से निपटने की सही रणनीतियाँ सीखना, प्रॉब्लम फोकस्ड या इमोशन फोकस्ड कोपिंग।
और एक बहुत शक्तिशाली तरीका बताया गया है, क्षमा करना सीखना, फॉरगिवनेस,
माफ करना। ये कैसे खुशी बढ़ाता है?
किताब कहती है कि माफ करना दूसरों के लिए उतना नहीं है जितना खुद के लिए है।
अच्छा,
ये हमें पुराने गुस्से, कड़वाहट, नाराजगी के बोझ से आजाद करता है।
ये बात तो सही है, बोझ लेकर चलना मुश्किल होता है।
और फिर आता है वर्तमान पल में जीना, माइंडफुलनेस।
इसमें क्या शामिल है?
इसमें फ्लो के अनुभव बढ़ाना शामिल है।
फ्लो, ये क्या होता है?
फ्लो मतलब किसी काम में इस कदर डूब जाना कि आपको समय का आसपास का पता ही ना चले, आप पूरी तरह उस पल में होते हैं।
जैसे कोई कलाकार पेंटिंग करते हुए, या कोई खिलाड़ी खेलते हुए।
हाँ बिल्कुल, या कोई बच्चा खेलते हुए। उन एक्टिविटीज को पहचानना और उनमें ज्यादा समय लगाना,
और
सेवरिंग यानी जीवन की छोटी छोटी खुशियों का स्वाद लेना, उन्हें ध्यान से महसूस करना,
जैसे सुबह की चाय की चुस्की का मजा लेना।
हाँ, या बारिश की आवाज सुनना, किसी अच्छे गाने को ध्यान से सुनना, सूर्यास्त देखना, उसे बस गुजर जाने देने के बजाय होश पूर्वक एंजॉय करना।
ये छोटे छोटे पल वाकई बहुत मायने रखते हैं।
अच्छा, इनके अलावा भी कुछ रास्ते हैं?
हाँ, किताब कुछ और स्थायी संतुष्टि के रास्ते भी सुझाती है, अध्याय 8 में।
जैसे अपने सार्थक लक्ष्यों के प्रति समर्पित होना, ऐसे लक्ष्य जो आपके लिए मायने रखते हों उनके लिए काम करना,
इससे जीवन में एक उद्देश्य मिलता है।
बिल्कुल। फिर धर्म या आध्यात्मिकता का अभ्यास करना, अगर ये आपके लिए मायने रखता है।
हाँ, ये अक्सर समुदाय, अर्थ और मुश्किल समय में सहारा देता है।
और सबसे जरूरी, अपने शरीर का ध्यान रखना,
फिजिकल हेल्थ।
हाँ, नियमित व्यायाम, ध्यान यानी मेडिटेशन, और एक दिलचस्प चीज, खुश होने का अभिनय करना,
एक्टिंग करना खुश होने की।
हाँ, सुनने में अजीब लगे पर शोध बताते हैं कि सिर्फ मुस्कुराने से या आत्मविश्वासी मुद्रा जैसे सीधा खड़ा होना अपनाने से भी हमारा मूड थोड़ा बेहतर हो सकता है। बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं।
वाह, ये तो काफी सारी प्रैक्टिकल चीजें हो गईं। ये वो 40% हिस्सा भरने के तरीके हैं।
हाँ, पर सवाल ये है कि ये खुशी टिकाऊ कैसे बने, लंबे समय तक कैसे रहे।
बिल्कुल सही सवाल, और यहीं पर किताब का तीसरा हिस्सा काम आता है, अध्याय 9 और 10।
तो क्या है स्थायी खुशी के रहस्य? अध्याय 9 क्या कहता है?
अध्याय 9 खुशी को स्थायी बनाने के 5 कैसे बताता है।
5 हाउस ऑफ सस्टेनेबल हैप्पीनेस।
हाँ,
अच्छा क्या है वो?
पहला, सकारात्मक भावनाएं पैदा करते रहना, मतलब ऐसी गतिविधियां चुनना और करते रहना जिनसे आपको सच में अच्छा लगे।
दूसरा,
सही समय और विविधता, टाइमिंग एंड वैरायटी, याद है हेडोनिक एडेप्टेशन?
हाँ, हम आदि हो जाते हैं।
तो एक ही चीज रोज करने से उसका असर कम हो जाता है, इसलिए अपनी खुशी की गतिविधियों में विविधता लाएं, बदल बदल कर करें, और कब करें ये भी देखें।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे शोध बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन तय करके दयालुता के 5 काम करना रोज एक काम करने से ज्यादा खुशी दे सकता है।
दिलचस्प। तीसरा कैसे?
सामाजिक समर्थन का इस्तेमाल, सोशल सपोर्ट। अपने लक्ष्य, अपनी कोशिशें दोस्तों या परिवार को बताएं, उनका साथ मिलने से मोटिवेशन बना रहता है।
सही बात है। चौथा,
समझना बहुत जरूरी है कि खुशी के लिए मेहनत लगती है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बस मिल गई।
हाँ, इसे बनाए रखने के लिए एफर्ट करना होगा।
बिल्कुल। और पांचवा है आदत बनाना,
हैबिट फॉर्मेशन।
लक्ष्य ये है कि ये खुशी बढ़ाने वाली गतिविधियां आपकी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाए, जैसे रोज ब्रश करना या नहाना, सोचना ना पड़े।
ये पांचों पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। और अध्याय 10?
अध्याय 10 में लेखिका खुशी और डिप्रेशन के बीच के संबंध पर बात करती हैं।
अच्छा?
वो बताती हैं कि ये जो खुशी बढ़ाने वाली रणनीतियां हैं, ये असल में मानसिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन के खिलाफ एक सुरक्षा कवच, एक बफर की तरह काम कर सकती हैं।
मतलब ये सिर्फ खुशी नहीं बढ़ाती बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रोटेक्ट करती हैं।
हाँ, और उनका अंतिम संदेश यही है कि हम अपनी खुशी और भलाई के निर्माता काफी हद तक खुद हैं। वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर ओन वेल बीइंग।
वाह, ये पूरी चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला।
हाँ बिल्कुल।
अगर हम कुछ 3-4 सबसे जरूरी निष्कर्षों को समेटें तो वो क्या होंगे? मेरे लिए शायद पहला यही है।
बताइए।
40% समाधान।
हाँ,
ये जानना कि हमारी खुशी का इतना बड़ा हिस्सा, 40% हमारे अपने हाथ में है, ये सोच ही कितनी ताकत देती है।
सही कहा, हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं।
बिल्कुल। और दूसरी बड़ी बात मेरे लिए है, खुशी एक कौशल है, मंजिल नहीं।
हाँ,
ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पा लिया और काम खत्म, ये तो एक बगीचे की तरह है जिसे रोज सींचना पड़ता है।
बिल्कुल, लगातार अभ्यास और प्रयास की जरूरत है, जैसे सेहत बनाने या कोई संगीत सीखने के लिए होती है।
सही। आपके लिए क्या खास रहा?
मैं इसमें दो और जोड़ना चाहूंगी। तीसरा, फिट सबसे जरूरी है, वो जो पर्सन एक्टिविटी फिट की बात थी।
हाँ, कि सबके लिए एक ही तरीका काम नहीं करता।
हाँ, कोई एक रामबाण इलाज नहीं है, हमें वो तरीके खोजने होंगे जो हमारे व्यक्तित्व, हमारी पसंद और हमारी जिंदगी के हिसाब से सही हों। किसी और की नकल करने से बात नहीं बनेगी।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
और चौथा?
चौथा है हेडोनिक एडेप्टेशन से लड़ना, क्योंकि हम अच्छी चीजों के आदि हो जाते हैं, इसलिए अपनी खुशियों में विविधता लाना,
वैरायटी।
हाँ, और जो हमारे पास है उसकी नियमित रूप से सराहना करना, मतलब कृतज्ञता, ये बहुत जरूरी है ताकि वो खुशी फीकी ना पड़े।
और हाँ, एक और बात जो बार बार सामने आई वो है
क्या?
सामाजिक संबंध अनमोल है।
हाँ बिल्कुल।
रिश्तों को सहेजना, दयालुता दिखाना, माफ करना, ये सब हमारी खुशी की नींव है।
भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ त्योहारों पर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े होने में जो खुशी और जुड़ाव मिलता है
वो इसी बात का सबूत है।
हाँ, हालांकि हमें वो सामाजिक तुलना वाले दबाव से भी बचना सीखना होगा।
सही कहा। इस किताब में वाकई ऐसे कई विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, दिमाग में रह जाते हैं।
हाँ बिल्कुल। कुछ विचारों पर बात करते हैं जो मुझे बहुत असरदार लगे।
जी।
पहला, जैसा हमने कहा, हमारी 40% खुशी हमारे हाथ में है, हमारे कार्यों से निर्धारित होती है, यह हमें एक एजेंसी, एक कंट्रोल का एहसास कराता है। दूसरा, खुशी वो नहीं है जो आप पाते हैं बल्कि वो है जो आप करते हैं।
ये बहुत गहरी बात है।
हाँ, खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये एक अंदरूनी प्रक्रिया है, एक एक्टिव चॉइस है।
बिल्कुल।
तीसरा, वो फिट वाली बात, खुशी के लिए कोई एक जादुई गोली नहीं है, कुंजी सही रणनीतियां खोजना है जो आपके व्यक्तित्व और जीवन शैली के अनुकूल हों।
ये हमें प्रयोग करने और अपने लिए सही रास्ता खोजने को प्रोत्साहित करता है।
हाँ, और चौथा, कृतज्ञता, आशावाद और दयालुता न केवल खुश करते हैं बल्कि स्वास्थ्य, सफलता और लचीलापन भी बढ़ाते हैं।
मतलब खुश रहने के प्रयास सिर्फ मूड ठीक नहीं करते?
नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाते हैं, हेल्थ, सक्सेस, रेजिलियंस, सब कुछ।
ये तो हुई समझने की बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन सब अच्छी बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए?
हाँ, जानना ही काफी नहीं है।
करना कैसे है?
तो एक ठोस कदम हो सकता है अपनी व्यक्तिगत खुशी योजना बनाना।
अच्छा, कैसे?
शायद किताब के स्केल से अपनी खुशी का स्तर मापें, फिर वो जो डायग्नोस्टिक टूल है उससे दो तीन ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपको सबसे ज्यादा अपील करें,
जो हमें फिट हो।
हाँ, फिर उन्हें अपने रूटीन में शामिल करने का पक्का इरादा करें।
जैसे?
जैसे रोज रात सोने से पहले तीन ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, या हफ्ते में एक दिन तय करना जब आप किसी अजनबी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। मतलब छोटे कदमों से शुरुआत करना जरूरी है।
सही कहा, एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल, और ये तरीके सिर्फ व्यक्तिगत खुशी तक सीमित नहीं है ना।
मतलब
रिश्तों में सुधार के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे?
सचेत रूप से अपने प्रियजनों को समय देना, उनकी बातें ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों के लिए आभार जताना।
हाँ, ये तो क्या ले सकता है।
ऑफिस में भी सहकर्मियों के प्रति थोड़ी और दयालुता दिखा सकते हैं, माहौल बेहतर होता है उससे।
और मुश्किलों का सामना करने में?
मुश्किलों का सामना करने के लिए हम किताब में बताए मुकाबला करने की रणनीतियों, कोपिंग स्ट्रैटेजीज को याद रख सकते हैं। जब निराशा महसूस हो तो वो बेस्ट पॉसिबल सेल्स वाली एक्सरसाइज करके आशा जगा सकते हैं।
हाँ।
या किसी पुरानी कड़वाहट को माफ करने का अभ्यास कर सकते हैं।
और रोजमर्रा के पलों को बेहतर बनाने के लिए?
उसके लिए सेवरिंग का अभ्यास,
वो स्वाद लेना।
हाँ, अपनी सुबह की चाय या कॉफी का स्वाद होश पूर्वक लेना, पसंदीदा संगीत को ध्यान से सुनना, बच्चों के साथ खेलते हुए पूरी तरह वहीं मौजूद रहना,
या वो फ्लो वाली एक्टिविटीज ढूंढना।
हाँ, ऐसी गतिविधियों की पहचान करना जिनमें आप पूरी तरह खो जाते हैं और उनके लिए समय निकालना।
तो बहुत सारे तरीके हैं। असल में मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि हमारी बाहरी परिस्थितियां,
हाँ,
जिनके पीछे हम इतनी मेहनत करते हैं, वो हमारी खुशी पर सिर्फ 10% असर डालती हैं।
है ना चौंकाने वाला?
बहुत। और ये जानना कि असली ताकत हमारे अपने कामों और सोच में है, वो 40%, ये बहुत बड़ी राहत और एक नई दिशा देता है।
और मुझे वो व्यक्ति गतिविधि फिट का विचार बहुत व्यवहारिक और मददगार लगा।
हाँ, वो पर्सनलाइजेशन वाली बात।
हाँ, ये हमें इजाजत देता है कि हम अपने तरीके से खुश रहें, भेड़चाल में न पड़ें।
सही।
और साथ ही खुशी को एक सतत यात्रा, एक अभ्यास की तरह देखना, ये दबाव कम करता है और प्रक्रिया को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है, न कि सिर्फ नतीजे को।
बिल्कुल।
कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ उम्मीद नहीं जगाती, बल्कि उस उम्मीद को हकीकत बनाने के लिए एक भरोसेमंद, वैज्ञानिक और एक्शन लेने लायक योजना भी देती है।
ये बताती है कि खुशी पाना मुमकिन है,
और इसकी चाबी काफी हद तक हमारे ही पास है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।